صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: وقبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. شب 40 اور آج کی رات مجلس کے بعد محمل برآمد ہوگی، اس لیے وہ اعمال جو مجلس کے بعد کے ہیں وہ ہمیں مجلس کے شروع میں انجام دینا ہے، کیونکہ جب کوئی شبیہ برآمد ہوتی تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ غم کے بیان کے فوراً بعد شبیہ برآمد ہو جائے. سب سے پہلا مرحلہ، ایک بچی بیمار ہے، ایک اور مومن بیمار ہیں، اور بھی کچھ بیمار ہیں، ان سب کے لیے التماس آئی ہے، آیا ایک کریمہ کی تلاوت کی تو پانچ مرتبہ آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. خداوند اس آیہ کریمہ کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، آج اس اربعین کی رات کا واسطہ، جن بیماروں کے لیے اسپیشل ریکویسٹ ہے ان کو اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما. اور جب دعا کا مرحلہ ہے تو باقی ساری دعائیں بھی جو آخر مجلس میں ہیں آج نہیں ہو سکیں گی، ہم شروع میں اس مرحلے سے فارغ ہوں. خداوندہ تجھے آج کی اس رات کا واسطہ، اربعین کے مصائب کا واسطہ، میرے مظلوم آقا حسین، ثانی زہرا، زینب کبریٰ، مظلوم وارث حسین، سید سجاد، اسیران کربلا کے مصائب کا واسطہ، جو لوگ آج کی مجلس میں آخر تک آ رہے ہیں، ان سب کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجت شرعیہ پورا فرما، غم حسین کے سوا انہیں دنیا اور آخرت میں کوئی غم عطا نہ فرما. خداوندہ دنیا بھر میں آج بھی جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار اور عزاداران امام حسین صرف اسی وجہ سے کہ وہ علی سے محبت کرتے ہیں ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ اس کانٹیننٹ کے کچھ اور ممالک ہوں، چاہے دنیا کے کسی علاقے میں ہوں، ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور ان مظلوم شیعان حیدر کی جان، مال، عزت، آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما. خداوندہ ہمارے تمام بیماروں، خصوصاً جن کے لیے شفا کی دعا کی گئی، ان سب کو صحت عطا فرما. صاحبان ایمان کو روزی اور رزق کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. صاحبان اولاد کی حفاظت فرما. خداوندہ لیکن اگر تیرے دین کو ضرورت پڑے تو ہم میں سے ہر ایک ماں اور باپ کو اپنی اولاد دین پہ قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما. مرتے دم تک بلکہ قیامت میں بلکہ جنت میں بھی ہمیں حسین کا عزادار اور ماتمی بنا کے داخل فرما. خداوندہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً آج مجلس کے بعد جن کی نماز جنازہ ہونے والی، مرحوم حسن علی مولدینہ، ان سب کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما، اور ان مظالم کے خاتمے اور حسین کے جہاد کو مکمل کرنے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. تیسری ذمہ داری، یہی ابھی جو آپ نے نام سنا اور غالباً یہی نام ہے، مرحوم حسن علی مولدینہ جن کا آج انتقال ہوا ہے، جن کی آج نماز جنازہ ہونے والی ہے، ان کے لیے خاص طور پر اور باقی تمام مرحومین، خاص طور پر جو لوگ مجلس میں ہیں، ان مردوں اور عورتوں کے خاندان کے تمام مرحومین، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور اسی سورہ فاتحہ کے حوالے سے ایک اناؤنسمنٹ، اور پھر یہ ساری چیزیں جو مجلس کے بعد ہوتی ہیں، مجلس کے شروع میں صرف اس لیے کرنا پڑ گئیں کہ محمل جو برآمد ہو تو صحیح معنوں میں آپ اس کی زیارت کر کے غم کریں اور پرسا دیں. تو لاسٹ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ مجلس کے بعد محمل برآمد ہوگی، اور اس کے فوراً بعد محفل عباس میں نماز میت کے نماز جنازہ ہوگی. جن مرحوم کا آج انتقال ہوا ہے، مرحوم حسن علی مولدینہ، جیسے یہ مجلس ختم ہو محمل، اور فوراً اسٹریٹ محفل عباس میں نماز جنازہ. کچھ لوگ شاید یہاں پہ ماتم کر رہے ہوں گے، جو نماز جنازہ کا ثواب لینا چاہیں وہ یہاں سے فوراً محفل عباس تشریف لے جائیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب آج میرے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، ریئلی اے پریکٹیکل پرابلم، کہ آج کی مجلس بہت سارے ایسے مومنین ہیں، بلکہ میجورٹی، جو اس پورے عشرہ زینبیہ میں اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے، اور آج بھی شب اربعین کی وجہ سے، لیلۃ الاربعین کی وجہ سے، چیلم ایو کی وجہ سے تشریف لائیں. اور عشرہ زینبیہ 1437 ہجرہ کی میری یہ آخری مجلس ہے. کل 11 بجے جو بیان ہے وہ تو خالی غم کا بیان ہوگا. تو اب یہ آخری مجلس میں جو مسلسل میں 11 دن سے ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں، اسے مکمل کرنا، تو یہ باتیں، بہت ساری چیزیں جو لوگ آج آئے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن وہ ایسے لوگ جو آج کی مجلس میں آئے، وہ مجھے یا میری مجلس کو سننے تو آئے بھی نہیں ہیں، وہ چہلوں کا ثواب، فضیلت، شہزادی فاطمہ کو ان کے لال کا پرسا دینے، زینب کبریٰ کے کربلا پہنچنے، اس حوالے سے آئے ہیں. تو یہ تقریباً 40 منٹ اگر باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو میری مجبوری کا خیال کر کے نظر انداز کریں، آج کی رات غم کا بیان ذرا زیادہ ہوتا. اور اس سے پہلے کہ میں اپنے اس عشرہ زینبیہ کے ٹاپک کو مکمل کروں، ایک بات، ایک فارمولا، ایک رول، ایک اصول میری تمام مجالس کے لیے بہت مختصر بتا دوں، اگرچہ ایک سوال تو آیا ہے لیکن آج ہمارے پاس ٹائم نہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ये सुना होगा, और जो लोग मेरी मजलिसें खुद रेगुलर सुनते हैं उन्होंने खुद मेरी मजलिस में सुना होगा कि मैं उलमा और मराजे के वाकयात ये स्टोरीज भी बहुत बयान करता हूं, और वो कोई फिक्शनल स्टोरीज नहीं होती हैं, फैक्ट जो वाकया पेश आया, और अंबिया के भी वाकयात बहुत ज्यादा बयान करता हूं। और इन दोनों चीजों में एक बात का ख्याल रखिएगा, और पहली बात मर्जे के हवाले से, हर मर्जे जो भी उसका वाकया या स्टोरी हो अपने फतवे के एतबार से वो एक्ट करेगा। ये तो बहुत ही एक फुलिश टाइप का हमारा कमेंट होगा कि हम वाकया सुने अल्लामा हिल्ली का और फतवा देखें आयतुल्लाह सिस्तानी का और कहें कि जी ये फतवे के एतबार से तो अल्लामा हिल्ली ने गलत किया। अल्लामा हिल्ली खुद एक मर्जे और बहुत बड़े मर्जे, वो अपने फतवे पे अमल करेंगे, आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे पे अमल नहीं करेंगे। वाकया तो मैं पढ़ू शेख तूसी का, वाकया तो पढ़ू मैं सैयद मुर्तजा का, वाकया तो पढ़ू मैं अल्लामा मजलिसी का, वाकया तो पढ़ू मैं मरहूम आगा मोहसिन हकीम या आगा खुई का। और आप आज के मर्जी की बुक उठा के चेक करें कि इसमें क्या लिखा, गलत। ये पूरा जो फिलॉसफी और लॉजिक ऑफ मर्जियत है ये उसके खिलाफ है। हर मर्जी अपनी रिसर्च से खुद जो फतवा देता है वो उसी के मुताबिक अमल करेगा, दूसरे मर्जे को नहीं देखेगा, बल्कि मर्जे से नीचे एक लेवल होता है मुश्तहिद, तकलीद मर्जे की होती है लेकिन उससे नीचे का लेवल मुश्तहिद। मुश्तहिद के लिए भी ये मसला कि वो मर्जे नहीं है मगर उसके लिए हराम है किसी मर्जे के फतवे पे अमल करना। मुश्तहिद का मतलब यह है कि खुद इतनी नॉलेज रखता है कि अपना फतवा दे सकता। बहुत ही छोटी एग्जाम्पल मुझे टाइम का एहसास है, और वो ये कि कल या परसों जो एक फिकही मसला मैंने बताया कि अगर आप कैसेट में रिकॉर्ड शुदा तिलावत कुरान सुने, अब कैसेट के अंदर वो सारी चीजें आ गई, चाहे वो MP3 हो चाहे वो आपका आईफोन हो, रिकॉर्डेड तिलावत कुरान, और उसमें सिजदे की आयत आ जाए तो आपके लिए सिजदा वाजिब नहीं। लाइव कारी पढ़ रहा हो तब सिजदा वाजिब है, नंबर एक। नंबर दो मसला यह है कि आप सिजदे वाली आयत नहीं सुनना चाहते थे, कोई जबरदस्ती आपको सुना दे, आप पे सिजदा वाजिब नहीं। बट ये फतवा आज के मर्जे का, अल्लामा हिल्ली के फतवे में ये था कि अगर कोई बाय फोर्स आपको सिजदे की आयत सुनाए, आप नहीं सुनना चाहते लेकिन अगर आपके कान में वो आयत पढ़ दे तो आप पे सिजदा वाजिब हो जाएगा। यही वाकया है उनका और उनके बेटे का कि बाप जब पनिश करने के लिए बेटे के करीब आता था, बेटा सिजदे की आयत पढ़ देता था, बाप तो सिजदा करता था, बालिग है बेटा नाबालिग है, बेटा भाग जाता। अब फतवा अगर सिस्तानी का नहीं चलेगा अल्लामा हिल्ली पर। तो ये तो बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल है, लेकिन इन जनरल इस अशरे में भी मराजे के पास मराजे कई वाकयात आए, लोगों ने उसको जाके चेक किया अगर सिस्तानी की बुक से, तो ये तरीका ही गलत है। एक बार नंबर दो, सेम रूल अप्लाई होता है अंबिया के वाकयात के बारे में कि अगर नबी का कोई वाकया पेश आया और आप उसको देखें कि आज हमारी शरीयत में क्या गलत है, पहले कंफर्म करें कि क्या मूसा की शरीयत का वो हुक्म और आज की शरीयत का हुक्म सेम है कि ये हुक्म चेंज हो चुका। कल एक वाकया आया कि एक आदमी को 100 दीनार मिल गए, वो लेके चला गया। अब ये उसके लिए जायज था कि नाजायज, हलाल था कि हराम, आज की शरीयत से फैसला ना करें। यकीनन रसूलुल्लाह की शरीयत हर नबी की शरीयत से अफजल, और रसूलुल्लाह की शरीयत कयामत तक के लिए, बट बिफोर रसूलुल्लाह जो शरीयत चल रही थी वो हजरत इब्राहिम की थी अरब वालों के लिए, और हजरत मूसा की थी पैलेस्टीन और जॉर्डन और इजिप्ट वालों के लिए। दो शरीयतें दुनिया में थी, वो अपनी शरीयत पे अमल करेंगे। अगर आप वहां पे आप देखें कि कोई आदमी दिन में 50 नमाज पढ़ रहा है तो आप ना कहिए कि ये तो इस्लाम में तो ठीक नहीं है, उनकी शरीयत में ठीक। अगर आप वहां ये हिस्ट्री सुने कि किसी के ड्रेस पर खून गिर गया तो उसने अपना ड्रेस काट के फेंक दिया, आप ये ना कहिए कि ये तो इसराफ हो गया, ये शरीयत रसूल में इसराफ है, शरीयत मूसा में यही वाजिब था, ये इसलिए कहना पड़ा कि कल का वाकया। जो पहला आदमी, पहला नहीं दूसरा वाला, 100 अशरफियां लेके चला गए। और वैसे बहुत मुख्तसर एक लफ्ज कह दूं ताकि जो एतराज आया वो भी सेटिस्फाई हो जाए कि मैं 11 दिन से मजलिस में आ रहा हूं, मौलाना को मेरा ख्याल करना चाहिए, जो लोग सिर्फ आज आए हैं उनका क्यों ख्याल कर रहे हैं, हम तो 11 दिन से सुन रहे हैं, उसको भी एक जवाब मिल जाए, जो आज आए हैं उनका टाइम भी वेस्ट ना हो। बहुत ही मुख्तसर, शरीयत में एक मसला है लुख्ता, वाजिबात का मसला, कि अगर आपको किसी पब्लिक प्लेस पर कोई वॉलेट, कोई पर्स, कोई कैश, कोई जेवर पड़ा हुआ मिले तो वो आपके लिए बिल्कुल हराम भी नहीं, उसका एक तरीकाकार है। लेकिन वो जो सिस्टम है कि एक साल का ऐलान करा और ये करो वो करो, ये तो आज की शरीयत का, पहली शरीयत में शायद इजाजत थी कि लुख्ता मिले तो आप उठा के उसके मालिक बन सकते हैं। बहुत ही मुख्तसर, इससे ज्यादा शॉर्ट में इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता। मगर ये चीज भी जो मैंने कही, खाली इसलिए नहीं कही कि कल रात की मजलिस या दो दिन पहले अल्लामा हिल्ली का वाकया उसको एक्सप्लेन करना था, नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट और टॉपिक भी यहीं पे जाके खत्म हो रहा। 11 दिन जो मैंने मेहनत की, आज 12वीं मजलिस यहीं पे जाके खत्म हो रही। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम, दीन को समझना पड़ता, मराजे के फतवे अलग हैं, ये बात को समझना पड़ता है और कबूल करना होता, अंबिया की शरीयतें अलग अलग थी, ये बात समझना पड़ती और इसको कबूल करना पड़ता। भाई मराजे में तो आपने कह दिया, आजकल जो एंटी मर्जे या एंटी मर्जे लॉबी के सब झूठ बोलते हैं, कुरान एक है, हदीस एक है, फतवे अलग क्यों? अंबिया में आप कैसे कहेंगे? अंबिया के अंदर यकीनन इख्तिलाफ है। मूसा और खजर का वाकया तो है कि खजर एक बच्चे को कत्ल कर रहे, मूसा सर पकड़ के बैठ गए कि इतना बड़ा गुना आपने कर दिया। तो ये चीज कबूल करना पड़ेगी कि अंबिया की शरीयत में खाली छोटी छोटी चीजों में इख्तिलाफ नहीं था, कत्ल, कत्ल कोई मामूली मसला नहीं है, गुनाहाने कबीरा में टॉप ऑफ द लिस्ट है, उसमें भी इख्तलाफ है। खिजर की शरीयत में कत्ल वाजिब है, मूसा की शरीयत में कत्ल हराम है, एक ही आदमी का, एक ही बच्चे का। तो खैर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम, और एक बार फिर एक जुमला रिपीट कर दूं फिर कल रात के टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, और वो ये कि सारी दुनिया के साहिबान ईमान करबला जाने के लिए तड़प रहे हैं डे ऑफ अरबईन, जो नहीं जा रहे वो टेलीविजन की स्क्रीन या कंप्यूटर के ऊपर लाइव डायरेक्ट करबला को देख रहे हैं, और फिर दिन में कभी वक्त मिलेगा यानी टुमारो वो ज़ियारत अरबईन पढ़ेंगे। तो ज़ियारत अरबईन में बहुत इंपॉर्टेंट ये ज़ियारत इसलिए भी है कि वो हदीस जो आप सुनते रहते हैं मोमिन की पहचान, मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूं, टाइम नहीं, और इसलिए भी है कि ज़ियारत अरबईन, अरबईन के दिन की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, अहमियत, वो कल सुबह मैं 2-4 मिनट बात करूंगा। तो ये ज़ियारत अरबईन डे की ज़ियारत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप क्या कहते हैं? आप हुसैन के पूरे मिशन को बताते हैं, क्योंकि हुसैन का मिशन 28 रजब को कंप्लीट नहीं हुआ जब हुसैन मदीने से चले, 8 जिलहिज को कंप्लीट नहीं हुआ जब हुसैन ने अपने हज को उमरे में कन्वर्ट किया और मक्के से निकले, 2 मुहर्रम को कंप्लीट नहीं हुआ जब करबला पहुंचे, 10 मुहर्रम को भी कंप्लीट नहीं हुआ जब हुसैन का सर काट के नोके नेजा पे बुलंद हुआ, हुसैन का मिशन कंप्लीट हुआ डे ऑफ अरबईन। और उस जियारत में सिर्फ एक जुमला आया, देखिए जियारत आशूरा में भी हुसैन का मिशन, अशहद अन्नका कद अकमत अस्सलात व आतैत अज़्ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर व अतअत अल्लाह हत्ता अताकल यकीन, हुसैन का मिशन, मगर 5 जुमले, जरा लेंथी हो गई बात। ज़ियारत आशूरा में हाफ अ सेंटेंस, आधा जुमला, अब पूरा हुसैन का मिशन आ गया। मैंने पहले भी रेफरेंस दिया, आज भी दे रहा हूं, और कल की मजलिस में भी ये रेफरेंस दूंगा। ज़ियारत अरबईन ठीक है, स्टार्ट होती है आका हुसैन को सलाम, 2 जुमले हैं सलाम के, इसके बाद ज़ियारत के दरमियान भी, ज़ियारत में बल्कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आप अल्लाह की जानिब अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। हुसैन को छोड़ दिया आपने, अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अशहदु, हाय खुदा मैं गवाही देता हूं, इन्नहु वलीयो कब अपने वली एक सफीयो कब अपने सफीय, अक्रम तो हो भी शहादा व हबै तो हो भी सहादा वश्तबै तो हो भी तीबिल विलादा व जालता हूं सैयदन मिन सादा व कायदन मिन अलकादा व जायदन मिन अजादा। अल्लाह से आप कहते हैं ओ अल्लाह गिव विटनेस, मैं गवाही देता हूं मेरा आका ये, मेरा आका ये, मेरा आका ये। कल आप स्क्रीन पर ट्रांसलेशन भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपका टाइम डबल डबल नहीं ले रहा हूं, ये सारे जुमले कहते फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जुमला आता, अक्रम तो हूं भी शहादा व हबाए तो हूं भी सहादा वश तबै तो हूं भी तीबिल विलादा वजालता हूं कायदा वजालता हूं सादा वजालता हूं जायदा व आताए तो हूं मवारिस अल अंबिया, मैं गवाही देता हूं कि तमाम अंबिया की मीरास हुसैन को मिली। जियारत वारिसा में पांच नबियों के नाम, छह के नाम, या वारिसा आदम सकी अल्लाह, या आदम नू नबी अल्लाह, या आदम इब्राहिम खलील, या आदम मूसा कलीम, या आदम ईसा रूह, या वारिसा मोहम्मद, या वारिसा अमीर अल मोमिनीन, छह या सात नबियों के नाम। जियारत अरबईन 124,000 अंबिया आए। खुदा मैं गवाही देता हूं कि हुसैन को तमाम अंबिया की पांच या छह या सात नहीं जो जियारत वारिसा में है, सारे अंबिया की मीरास मिली। ये जियारत अरबईन में आप कह रहे हैं। फिर एक आधा जुमला, हाफ ए सेंटेंस, जब आप कहते हैं फाजरा फाजरा बिद दुआ व मनहनुस व बजला मोहजता हूं फी, आई बेयर विटनेस, आई गिव विटनेस, में गवाही देता हूं हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दी। क्यों? ले यस तन कजा इबाद का मिनल जहाल, ताकि तेरे बंदे नॉट मोमिन नॉट मुस्लिम इबाद का जहां जहां अल्लाह का बंदा, हो सकता है कि आउटर गैलेक्सीज में भी अल्लाह के बंदे हों, साइंस तो वहीं जा रही है ना। ये लफ्ज आया इबादा का, मोमिन के लिए हुसैन ने जान नहीं दी, मुसलमान के लिए हुसैन ने जान नहीं दी। कल आप पढ़िएगा, आप ट्रांसलेशन भी देखिएगा, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में है। ले यस्तनकज़ा इबादा का, अरबी में इस्तनकज़ा के माने कोई आदमी डूब रहा हो और आप हाथ पकड़ के उसे पानी से बचा ले। मैं गवाही देता हूं हुसैन ने तेरे बंदों को बचाया मिनल जहाला इग्नोरेंस जहालत से। और यहां पर भी ये देखिए कि अगर खाली लफ्ज जहालत आता तो हो सकता है कि 21st सेंचुरी में कोई कहता कि हुसैन के मिशन का मकसद है स्कूल बनाओ कॉलेज बनाओ यूनिवर्सिटीज बनाओ। ये चीजें अच्छी चीजें हैं, कौम को वेल एजुकेटेड करना है। 15 साल में या 12 साल में सद्दाम के बाद से आज तक मुझे कोई ग्रुप याद नहीं कि आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात हुई और ये एडवाइस उन्होंने न दी कि अपने बच्चों को बेहतरीन दुनिया की सेकुलर एजुकेशन दिलवाओ। मगर जियारत अरबईन के में ये नहीं है, लियस्तन कजा इबादत का मिनल जिहाला, जिहालत दूर करो। तब लोग कहते हैं कि हम उनको ए लेवल करा दें ओ लेवल करा दें, यह है जिहालत दूर करना। ये चीजें गलत नहीं है, ये चीजें पूरी नहीं है, ये चैरिटी के बहुत जबरदस्त काम है। मगर असल मकसद हुसैन का वजाहत वहीं पे एक्सप्लेनेशन, ले यस्तन कजा इबादत का मिनल जहाला वल हैरत जलाला, वो जिहालत जो आदमी को गुमराह करती है मिसगाइड करती है, जो आप सुबह दोपहर शाम नमाजों में कहते हैं सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला वालीन, उससे उस जालीन से हुसैन आपको बचाना चाहते हैं। और वो है शरीयत की नॉलेज दीन की नॉलेज। अब यहीं पे हम कल के टॉपिक से मिल गए। कल का हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि अगर कोई इमाम जमाना का इंतजार करेगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा जैसे वो करबला में 10th of Muharram 61 हिजरा को आका हुसैन के टेंट और खेमे में बैठा, इतना सवाब। करबला में आका हुसैन के टेंट और खेमे में आना, और आज नहीं आज खेमागाह की जियारत वो नहीं, उस दिन जिस दिन कर्बला का वाकया हुआ हुसैन के खेमे में हो, इतना सवाब मिलेगा इमाम जमाना का इंतजार। बट कौन सा इंतजार? हमारे सामने इंतजार के हवाले से एक आयत आती है, एक रिवायत आती है और हिस्ट्री के दो वाकयात आते हैं। यानी ये तो पूरा अशरा हो सकता है जो मुझे अशरा दकीके में मुकम्मल करना, अरबी तो आपको ज्यादा आती है उर्दू से, 10 मिनट्स 15 मिनट्स एक आयत। आयत कौन सी जो आज मैंने तिलावत की? अल्हम्दुलिल्लाह हर मजलिस में मैंने एक डिफरेंट आयत तिलावत की ताकि जरा सा मुझे भी कुरान का सवाब मिलता रहे, जरा सा ट्रांसलेशन बच्चे सुनते रहे। आज की आयत क्या है? आज की आयत यह है कि ए रसूल, ये सूरह बकरा आयत नंबर 89, ए रसूल बहुत से लोग तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आखिरी रसूल का इंतजार, जैसे आखिरी इमाम तो आखिरी रसूल, मगर जब तुम आ गए तो यही लोग कफरू बेई काफिर बन गए, इंतजार करने वाले, और वो भी मा आरफू, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि सच्चा रसूल है। एक तो यह है कि हम पहचान ही ना पाए जो आखिरी इमाम से पहले दज्जाल करेगा, इतना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि हम में से बहुत सारे लोग सिंसियर होंगे पहचान नहीं पाएंगे, फिर उनके साथ क्या होगा वो एक अलग टॉपिक है। मगर कुरान कह रहा है फलम जा अहुम कफरुबे फलम जा अहुम मा आरफू, उन्होंने तुम्हारी मारिफत हासिल कर ली कि तुम वही सच्चे रसूल हो, फिर भी इंकार कर दी, काफिर हो गए, फलानतुल्लाह अलल काफिरीन। कुरान की आयत क्या बता रही? इंतजार करने वाला उसी को, उसी का दुश्मन बन जाता जिसका इंतजार कर रहा। यह आयत हमारे लिए कहीं ना हो जाए, जबकि इमाम ने कहा जो बनी इसराइल में हुआ है वो सब तुम में होगा। और एग्जांपल देखिए इमाम ने क्या दी, कहा कि अगर कभी किसी भी वजह से बनी इसराइल किसी जानवर के बिल में गए होंगे तो तुम भी उसी में जाओगे, इतना उनको कॉपी करोगे। अब टाइम नहीं है कि एक एक चीज समझाऊं, मैं तो खाली आयत, आयत कह रही है सिंसियरिटी के साथ इंतजार करने वाले, जब वो आ जाता है अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव उसका इंकार कर देते। लेकिन यहां पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ता हूं, टाइम बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक इशारा कर दूं। इस्लाम के बहुत बड़े बड़े दुश्मनों में एक नाम है मरहब का, मरहब व अंतर, इनको दोनों भाई है ना, इनको इनके पेरेंट्स ने खास रसूलुल्लाह की हेल्प के लिए वक्फ किया था। वक्फ जैसे प्रॉपर्टी लोग वक्फ करते हैं, अपने दो बेटे वक्फ कर दिए कि बहुत बहादुर है, बहुत ताकतवर है, आखिरी रसूल को जरूरत पड़ेगी। जैसे कल मैंने कहा कि पुराने बुजुर्ग तलवार रख के सोते थे कि आखिरी इमाम को जरूरत पड़ेगी, तो मरहबो अंतर के पेरेंट्स ने आपस में डिस्कशन किया कि ये बहुत बहादुर बहुत ताकतवर, ये तो आखिरी रसूल के लिए इसको सर्विस देना, बाकायदा वक्फ कर दिया था। और उस जमाने का एक तरीका था कि अहले किताब यहूदियों जो रसूलुल्लाह के लिए कोई चीज वक्फ करता है वो सीधा खैबर भिजवा देता। खैबर असल में एक किस्म का वक्फ का सेंटर था जो रसूल के लिए, किसी को दिरहम भिजवाना, किसी को दीनार भिजवाना, किसी को अपने बेटे भिजवाना, जो रसूलुल्लाह के लिए वक्फ किए गए वो रसूलुल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन बने। तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है ना, इंतजार तो वो भी कर रहे हैं और ऐसा इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा तो हम भी नहीं कर रहे। हमारे यहां कितने लोग इमाम जमाना के लिए कोई चीज वक्फ करते हैं, हमारे यहां कितने लोग अपने ब्रिलियंट या होनहार बेटे को इमाम जमाना के लिए वक्फ करते हैं। हमसे ज्यादा इंतजार, लेकिन कुरान ने कहा इंतजार करने वाले दुश्मन भी हो गए और मराबो अंतर जो वक्फ किए गए रसूल के लिए वो रसूल के अगेंस्ट इस्तेमाल हुए। कोई टेक्निकल मिस्टेक है ना कहीं पे, इंतजार में कोई खराबी थी ना, ये तो आयत हुई। अब हदीस सुनिए, जो जरा सा इस बात को एक्सप्लेन करें। पैगंबर की एक हदीस है जिसे शहीद बाकर सदर ने अपनी वो किताब द अवेटेड सेवियर, इंतजार इमाम, उसमें कोट किया है और बल्कि बहुत एम्फेसाइज किया, समझिए पूरी किताब इसी हदीस की एक्सप्लेनेशन है। अफजलुल आमाल इंतजारुल फरज, अफजल अरबी जबान में सुपरलेटिव है। अफजल आमाल का मतलब है गुड अमल नहीं, बेस्ट। बेस्ट बेस्ट हमेशा एक होता, का सबसे अच्छा अमल इंतजार इमाम, सबसे अच्छा अमल, नमाज से भी ज्यादा, रोजे से भी ज्यादा, और बाकी लिस्ट बता के टाइम क्यों कंज्यूम किया जाए, जितने आमाल। अब ये पैगंबर की हदीस, घर के ही हदीस, बाद में पांचवें छठे आठवें इमाम की भी है, लेकिन स्टार्ट रसूल ने किया कि जो शरीयत मैं लेके आया हूं उसमें बेस्ट अमल क्या, इंतजार। तो हमारी तो समझ में नहीं आता ये बेस्ट अमल कैसे हो गए, वाय, क्योंकि हमको पता ही नहीं इंतजार किसे कहते। हम समझ रहे हैं इंतजार है बस इसी तरह घर में बैठे रहो, दुकान से इमामबाड़े, इमामबाड़े से मस्जिद, मस्जिद से जॉब, जॉब से घर, ये है इंतजार। आ जाएंगे इमाम तो चले जाएंगे, नियत यही है चले जाएंगे, अब जाता वाता कोई नहीं है लेकिन कम अज कम चले, ये नियत तो है। ये को थोड़ी है इंतजार, जो कल मैंने थोड़ा सा एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दी, इंतजार का मतलब है प्रिपरेशन। ये जो कहा रसूलुल्लाह ने कि अफजलुल आमाल इंतजार, ये क्यों कहा, क्योंकि अगर वाकान इमाम जमाना का इंतजार करोगे और प्रिपरेशन के साथ, पूरा इस्लाम उसमें आ जाएगा। नमाजें पढ़ना इंतजार है, रोजा रखना भी इंतजार है, हिजाब करना भी इंतजार है, बेड रखना भी इंतजार है, शराब को अवॉइड करना भी इंतजार है, क्योंकि इंतजार प्रिपरेशन। क्या प्रिपरेशन? जो इमाम सिस्टम सारी दुनिया में बनाएंगे वो उनके आने से पहले ही हम अपने घर में ले आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इमाम के आने के बाद। देखिए प्रॉब्लम वहां होगा कि इमाम आएंगे कहेंगे ये काम करो, हमें हैबिट ही नहीं होगी वो काम करने, हैबिट ही नहीं है वो काम करने की, हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। जैसे आपको मालूम है कि इंग्लैंड में मसला आर्थराइटिस का भी मरज है, वेदर भी ऐसा, लोगों से इस तरह नहीं बैठा जाता मजलिस में जैसे आप बैठे। यहां भी माशाल्लाह बहुत चेयर हो गई है, लेकिन वहां तो अब ऑलमोस्ट 50%, कुछ अरसे में 80%। वाजिब मुस्ताहब की बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उन्हें अगर बिठा दिया जाए जमीन पे तो बैठा ही नहीं जाता उनसे, मजलिस ही नहीं सुन पाते, इतना पेन हो रहा होता, हैबिट ही नहीं। तो अब इमाम के आने के बाद इमाम जो सिस्टम लाएंगे, वो मैं एक सिंपल सवाल करूं, आपके जहन में इमाम का क्या सिस्टम, छोड़ दीजिए अभी कुरान और हदीस, इमाम आएंगे और आने के बाद कहेंगे अरे हमारे शियों आज से परमिशन है शराबे पियो क्योंकि मैं आ गया हूं, नमाजें कजा करो, बेहिजाब घूमो, मिक्स गैदरिंग का इंतजाम करो, बच्चों ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक और सॉन्ग सुनो, मैं आ गया हूं, ये कहेंगे इमाम? या कहेंगे कि अब तक जो होता रहा सो होता रहा, आप कोई वाजिब को कजा नहीं कर सकते, कोई हराम को अदा नहीं कर सकते। अगर आप खुद भी कहें कि आज ये सिस्टम है तो इंतजार इसका नाम है कि ऐसा बनो ताकि जैसे ही इमाम आ जाए आप फौरन पहुंच जाए। अगर दाढ़ी नहीं है तो इमाम के आने के बाद एटलीस्ट आपको कितने दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं थोड़ी बहुत दाढ़ी आने में, इतना तो आप रुक जाएंगे ना कि दाढ़ी आए तो इमाम के सामने जाए। तो इंतजार अफजल अमल इसलिए है कि एक इंतजार में सारे वाजिबात आ जाते हैं, एक इंतजार में सारे हराम से बचना आ जाता है, ये है एक्चुअल इंतजार। अच्छा सारे वाजिबात कौन कौन से? फुरुए दीन तो खाली 10 वाजिबात हैं। वाजिबात में एक का जिक्र पहले गुजर गया, वह आका हुसैन का जिहाद है, आगे बयान करूंगा, सिर्फ मुख्तसर सा जुमला। इंतजार है इमाम में वाजिबात, और वाजिबात में अवेयरनेस, पता चले कि मुसलमानों पे क्या गुजर रही। ये जुमला कहना इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, भाई यमन में हो रहा है इससे मेरा क्या ताल्लुक, सीरिया में हो रहा है इससे मेरा क्या ताल्लुक, ये वाजिबात के खिलाफ है। पैगंबर ने तो इसको इतना बड़ा वाजिब बनाया, फलैसा भी मुस्लिम, का तो मुसलमान ही नहीं। अगर तुम्हें पता ना हो दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और फिर तुम्हारी ड्यूटी क्या, जैसे ही आपको इत्तला मिले क्या हो रहा है, ड्यूटी शुरू होती। हमें पता चला कहीं एक मोमिन भूख की वजह से मर रहा, जब जैसे ही पता चलेगा उसको खाना देना वाजिब हो जाएगा। कभी सोचा आपने बैठकर कि इमाम का इंतजार अव्वल तो हम कैसे कर रहे हैं, और अगर आज के बच्चे ये स्मार्टफोन और व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या, इसकी वजह से उनको न्यूज मिलती रहती है, यमन में ये हो गया फलां ये हो गया, तो अगला सवाल मैं क्या करूं, मेरा रोल क्या हो, ये है इंतजार। ये हो गई हदीस, एक आयत एक हदीस, हिस्ट्री के दो वाकयात, दो वाकयात। एक मदीने वाले थे और एक कूफे वाले थे। मदीने वाले थे वन हिजरा में, वन कूफे वाले थे 60 हिजरा में। ये दोनों वो हैं जिन्होंने अपने जमाने के हुज्जत खुदा को अल्लाह रिप्रेजेंटेटिव इनवाइट किया। मदीने वालों ने रसूल, उस वक्त रसूलुल्लाह थे, उन्हें बुलाया आप आ जाइए हमारे शहर में आ जाइए, जैसे हम कहते हैं मौला इमाम जमाना आ जाइए। एक कूफे वालों ने आका हुसैन को खत लिख के बुलाया। ये हिस्ट्री, एक आयत एक हदीस, दो वाकयात हिस्ट्री के। रसूलुल्लाह को बुलाया मदीने वालों, कूफे वालों ने बुलाया इमाम हुसैन। बस जहां कूफे वालों का इन्विटेशन हुआ वो वहीं से समझिए करबला और अरबईन का मौजू आ गए। क्या जवाब दिया पैगंबर ने मदीने वालों को? अब एक बात याद रखिए कि हमारे जो प्रेजेंट डे इमाम है, करंट इमाम, इमाम जमाना, उनका एक टाइटल है साहिबुद दावतिन नबविया। ये नबी की तरह से दीन को फैलाएंगे, ये इमाम का एक टाइटल है। तो आप देखिए नबी का तरीका क्या था। मदीने वालों ने कहा कि या रसूलल्लाह आप आ जाइए। रसूलल्लाह प्रीचिंग के लिए मक्के में भी गए, डिफरेंट लोकलिटीज और महलों में, ताइफ भी गए मदीने भी गए। मक्के वालों ने रसूल को नहीं बुलाया, रसूल खुद गए, पैगंबर ने कोई कंडीशन नहीं लगाई। ताइफ वालों ने रसूल को इनवाइट नहीं किया, रसूल खुद गए, कोई कंडीशन नहीं लगाई। मदीने वालों ने रसूल को इनवाइट किया, पैगंबर ने कंडीशन लगाई। नॉन मुस्लिम इमाम जमाना को नहीं इनवाइट कर रहे, इमाम उनसे कोई कंडीशन नहीं लगाएं। आम मुसलमान इमाम जमाना को इनवाइट नहीं कर रहे, इमाम उनसे कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे। हम और आप इमाम को रोजाना इनवाइट करते हैं, अजल अल्लाह अजल अल्लाह आला जल आ जाइए आ जाइए। हमारे लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन? जो उनके दादा ने लगाई थी, साहिब दावत नबवी। क्या कहा मदीने वालों से? पहले अपने आप को चेंज करो फिर मुझे इनवाइट करो। 3 साल पैगंबर ने अपने सहाबी को भेजा मौसा इब्ने उमर, उन्होंने मदीने वालों को चेंज किया। जब मदीना चेंज हो गया तब उनकी रिपोर्ट पे रसूलुल्लाह ने हिजरत की। जो नबी या इमाम को इनवाइट करता उससे कहते हैं अपने आप को चेंज करना होगा। और अगर कोई कहे कि भाई अगर हम चेंज ना करें, हम तो वेट कर रहे हैं वो आ जाए तो हम चेंज हो जाएंगे, तो उसके लिए फिर आका हुसैन का वाकया, देखो कूफे वालों ने मुझे बुलाया, मैंने उनके लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई, तुमने इनवाइट किया मैं आ रहा हूं। ये तो हम पढ़ते हैं कि इतने लेटर्स गए थे, बोरियां भर गई थी। हम और आप अज्जल अल्लाह जितनी कहते हैं दुनिया भर में, वो ऐसी है कि अगर आप उसको पेपर पे लिखें ना तो कूफे वालों से 100 टाइम्स ज्यादा बोरियां भर जाएंगी। हम जबान से कहते हैं लेकिन अगर लिखें, आज की रात अरबईन की रात पूरी दुनिया में जितने शिया हैं सब कह रहे होंगे अज्जल अल्लाह। अशरा जैनबिया की हर मजलिस में कहा गया होगा अज्जल अल्लाह, बोरियां भर जाएंगी। कूफे वालों ने भी लेटर भेजे लेकिन चेंज नहीं किया, खाली बोला लिया। क्या हुआ? पहला रिजल्ट तो ये निकला कि चूंकि चेंज नहीं किया था और हुसैन को बुला लिया। इब्ने जियाद जिस दिन कूफे में आया, कूफे वालों ने कहा हुसैन आ गए, यही तो आखिरी जमाने में दज्जाल करेगा, झूठा इमाम बना के लाएगा और जो बगैर चेंज के इमाम को बुला रहे हैं वो उसी को सच्चा मान लेंगे। जब इब्ने ज़ियाद एंटर हुआ था कूफे वालों ने यही तो कहा था, हुसैन आ गए हुसैन आ गए। और फिर जब पता भी चला कि ये हुसैन नहीं आए तो इतने बेहया बन गए ये कूफे वाले कि जब सैदानियों का काफिला कूफे में एंटर हुआ आका हुसैन को नोके नैजा पे कुरान तिलावत करना पड़ा ताकि कूफे वालों की अटेंशन हुसैन की तरफ हो, ज़ैनब का पर्दा बच जाए। ये मौजिजा तो हुसैन ने कर्बला में नहीं दिखाया जो कूफे के गुंडे और बदमाशों से अपने काफिले को बचाने के लिए दिखाया। तो हमारे सामने दो हिस्ट्रीज आ गई, चेंज करके बुलाओ रसूल आ जाते हैं, अपने आप को चेंज ना करो ये सोचो वो आके चेंज करेंगे। अगर इमाम आ भी जाएंगे तो यही लोग इमाम के दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन चेंज कब करे आदमी, जब उसके पास रिलीजन का अवेयरनेस हो। अगर वो यही समझ रहा है कि नमाजें पढ़ के बिजनेस पार्टनर का हक जाय कर दो यही इस्लाम है, वो कहां से चेंज हो। अगर वो यही समझ रही है कि हिजाब करके फैमिली लाइफ को स्पॉइल कर दो तो कहां से चेंज होगी। चेंज बहुत बेसिक कंडीशन, लेकिन चेंज के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन होना चाहिए, पता चले किस वक्त क्या काम करना है। हमारे यहां आज चेलुम की रात है, मैं जोक जैसी बात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूं ये फैक्ट आपको बता रहा हूं फैक्ट। वो क्या बात है कि कराची में जहां मैं रहता था रिजविया सोसाइटीज का नाम, वहां पे शूज बहुत चोरी होते थे मस्जिदों में। इंडिया पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन एक ऐसा चोर था, लोगों को पता था कि ये आदमी चोरी करता, बस उससे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई हमारा जूता चोरी ना करो। जैसे कफन चोर लोगों के वाकयात मिलते हैं कि लोग पहले जमाने में कफन चोरी करते थे तो बहुत से लोग लाइफ टाइम उसको पैसे दे देते थे, भाई कितने का कफन है ये पैसे ले लो, मेरा कफन चोरी ना करना। बहुत सारे वाकयात हैं इसमें। ये चोर जिसको लोग पहचान गए थे, लेकिन रिजविया सोसाइटी की मस्जिद ऐसी है कि जहां पे 100 अगर नमाजी हैं तो 10 लोकल हैं, 90 बाहर से लोग आते हैं, उनको तो नहीं पता जूते चोरी होते। एक खास बात, वो कभी काले रंग का जूता चोरी नहीं करता। पूछा गया क्यों, कहा ये मकरूह, काले रंग का जूता मकरूह है, जूता चोरी करना जायज है तुम्हारे पास, हराम काम कर रहे हो। कह रहे नहीं काला नहीं, काले जूते को हाथ नहीं लगाऊंगा, ये मकरूह। हमारी कौम लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ऐसे तमाशे इतने होते हैं, इतने होते हैं। हराम काम कर रहे हैं, मकरूह से अपने आप को बचा रहे। अब जुमला मैं कह रहा हूं ये आपके लिए नहीं है, जर्नल। वाजिब नमाजें कजा कर रहे हैं, दुआए कुमैल में तड़पे जा रहे हैं। दुआए कुमैल मुस्ताहब है। यहां तक मसला है कि अगर आपको पता है कि मैं वाजिब नमाज पढ़ूंगा तो नमाज शब नहीं पढ़ सकता, नमाज शब पढ़ूंगा तो वाजिब नहीं, छोड़ दे नमाज शब। वो जो एक बहुत मशहूर आलिम का वाकया, वो नमाज शब के लिए उठे, अपने बेटे को भी उठाया बालिग, कहा नमाज शब पढ़ो बड़ा सवाब है। उसने नमाज शुरू की, नमाज खत्म करके कहा देखिए बाबा बाकी सब लोग सो रहे हैं। बाप ने कहा अफसोस मैंने तुझे क्यों उठाया, तू भी सोता रहता, ऐसी सुन्नत नमाज का क्या फायदा कि खीबत करके फैले हराम कर रहा, ऐसे सुन्नत काम में कोई फायदा नहीं। जियारत पर आदमी जाए गुनाह करते, हज पर आदमी जाए गुनाह करते हुए वाजिब हज छोड़ दे। मैंने मिसाल दी थी जियारत में, मैंने होटलों में देखा है खाने पे जितने झगड़े होते हैं, मगर ये बात सिर्फ आ गई कि इमाम जमाना कहते हैं अवेयरनेस, चेंज। चेंज के लिए नॉलेज और अवेयरनेस होना चाहिए। और यही वजह है कि हुसैन का मिशन था सारी इस्लामी दुनिया को चेंज करना, मगर इसके लिए अवेयरनेस जरूरी थी। अब फिर जियारत अरबईन के उस जुमले पे आइए जो एक मरतबा फिर मैं कल की मजलिस में पढ़ूंगा, वह बजला मुहजतहु फीका, अय खुदा हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दी, ले यस्तनकज़ा इबादत का मिनल जिहाला, लोगों में अवेयरनेस आए। तो हुसैन का जिहाद करबला में कंप्लीट नहीं हुआ, इनकंप्लीट है जब तक के लोगों में अवेयरनेस ना आए। और ये अवेयरनेस आई शाम में, चुनाचे शाम में जाके हुसैन का जिहाद मुकम्मल हुआ। करबला में हुसैन मारे गए, बड़ी कुर्बानियां थी, क्या चेंज आई? लश्कर यजीद तो वैसा का वैसा ही रहा, लेकिन चेंज कब आई? जब हुसैन के बच्चे और हुसैन के घर की खवातीन कूफा और शाम पहुंची, वहां पे ऐसी चेंज आ गई, अब हुसैन का जिहाद मुकम्मल हो गया। चुनाचे अब इस काफिले को वापस मदीने आना। हां यह जरूर बता दिया जाए कि हम क्यों कहते हैं, वाई हम कहते हैं कि अरबईन में जाके हुसैन का मिशन कंप्लीट हुआ, क्योंकि पहले समझना पड़ेगा हुसैन का मिशन क्या। हुसैन का मिशन है, फिर सुन लीजिए, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम। और ये शाम वाले एक रोबोट जनरेशन थी शाम की, शाम की जो जनरेशन थी ना वो रोबोट जनरेशन थी, ब्रेन वॉश। जब उससे वो बच्चा पैदा होता है उसे अली की दुश्मनी और अहले बैत की दुश्मनी के अंदर ग्रो अप किया जाता, और एक साल नहीं तीन जनरेशन गुजर गई। मुआविया की फैमिली को शाम का गवर्नर अराउंड 15 हिजरा बनाया गया, 45 हिजरा, 45 साल एक फैमिली, हिंदा की फैमिली, उसे एक इलाका दिया गया और वहां कंप्लीट उसकी अथॉरिटी और इख्तियार है। शाम के बच्चों को, शाम के जवानों को, शाम के मर्दों को, शाम की औरतों को पैदाइश से लेके मौत तक अहले बैत की दुश्मनी सिखाई जाती। ये कुनूत में अली के नाम पे लानत एक मामूली एक्ट नहीं, मगर ऐसी रोबोट जनरेशन जो यजीद कहेगा वही उनके नजदीक सही। जब अहले बैत एंटर हुए सीरिया में, यजीद ने ऐलान कराया ये बागी है और बागी का बेटा, सबने मान ली। ये बागी की फैमिली है जो कैदी बना के आई, ये सबने मान ली। मगर उसी शाम में इतना बड़ा चेंज आया, सकीना रोती रही, सब उस वक्त हंसते थे, सज्जाद तौक और हथकड़ी पहन के खुतबा देते रहे, लोग कीप क्वाइट साइलेंट, कोई प्रोटेस्ट नहीं है इसके ऊपर। ज़ैनब दरबार में खड़े खड़े इतना थक गई कि अब्बास को याद किया, एक मुसलमान आगे बढ़ के कोई हमदर्दी या सिंपैथी का जुमला नहीं कहता, रोमन एम्बेसडर तो फिर भी खड़ा हो गया। मगर यही शाम सीरिया, यहां वो दिन आया कि शाम के नौजवानों ने यजीद के महल को चारों तरफ से घेरे में ले लिया और कहा कि अरे यजीद, हमको नहीं मालूम था ये कौन लोग, अब पता चला। अब कैसे पता चला? कोई वही आई, कोई जिब्राइल उतरे? नहीं, ये सज्जाद के खुतबे, ये ज़ैनब की कैद है, ये सकीना का मातम है। शाम के नौजवान आके कह रहे हैं यजीद के महल को घेरे में ली, अरे यजीद अब हमको पता चला कि ये कौन। और जब हमें मालूम हो गया अब हम इनकी कैद बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको रिहा करो वरना हम तुम्हारे खिलाफ तलवार निकालेंगे। मेरे अपने तीन जनरेशन से मेरे चचा ने, फिर मेरे बाप ने, फिर मैंने, जिन्हें ब्रेन वॉश किया, वो मेरे अगेंस्ट हो गए। भाई यही ज़ैनब का मकसद था, यही हुसैन का मकसद। चेंज मदीने में आए तो फायदा नहीं है, चेंज दुश्मन के अपने शहर में आए। अवेयरनेस, अरे ऐसी चेंज आई कि बीवी अगेंस्ट, यजीद का अपना बेटा अगेंस्ट। और जब ये चेंज आ गई, यजीद ने देखा कि मैंने अपनी चेयर और कुर्सी बचाने के लिए इतना जुल्म किया, यही मेरी चेयर खतरे में है, मेरे अपने लोग मेरे अगेंस्ट हो रहे हैं। यजीद ने प्रॉमिस किया कल मैं इनको रिहा करूंगा। और बस गम का बयान शुरू। मुझे यहां दारुसलाम का तरीका नहीं पता, हमारे यहां कराची में चेहलुम की रात अहले बैत की रिहाई पढ़ी जाती है और पहली महमिल पढ़ी जाती है जो डिमस्कस से निकली और डे ऑफ जेलुम पर यही महमिल जब करबला में एंटर हो। मसाइब के दो पार्ट हो जाते हैं, मैं इसी के हिसाब से बात कर रहा हूं। सज्जाद के खुतबे, ज़ैनब की कैद, सकीना का मातम, अहले बैत की मजलूमियत, यजीद को वादा करना पड़ा कि कल मैं इनको रिलीज करता हूं और नेक्स्ट डे आ गया। यजीद ने दरबार लगाया और एक मर्तबा कैद खाने से सज्जाद को बुलाया। शाम गरीमा से पहले हुसैन ने ज़ैनब से कहा था, ज़ैनब बहन आज से सज्जाद तेरी हिफाजत में, मेरे सज्जाद को बचाना तेरा काम। और बड़े टफ स्टेजेस आए थे कि ज़ैनब को सज्जाद को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो जब ज़ैनब ने सुना यजीद का गुलाम आया, मेरा सज्जाद दरबार में बुलाया गया, ज़ैनब घबरा के लिपट गई, सज्जाद बेटा मैं तुझे अकेले ना जाने दूंगी, भाई से वादा किया था तेरी हिफाजत। सज्जाद ने कहा फोपी अम्मा आज मुझे अकेला जाने दो, आज मुझे पता है क्यों बुलाया गया, घबराइए नहीं, आज कोई डर की बात नहीं। बस इमाम ने इतना कह दिया ज़ैनब के लिए ना, ज़ैनब खामोश। सज्जाद यजीद के दरबार में एंटर हुए, आज यजीद का स्टाइल ही चेंज, वही कुर्सी खतरे में है जिसके लिए सब कुछ किया है, खड़े होकर इस्तकबाल करता। कल ज़ैनब दरबार में इतनी देर खड़ी रही है बेहया, देख नहीं रहा था, आज खड़े होकर इस्तकबाल करता। तख्त में अपने बराबर जगह बनाई, आइए फरजंद रसूल मेरे साथ बैठ जाइए। हाय सज्जाद, एक साल गुजर गया लेकिन ऐसा लगा कि वो मंजर अब तक सज्जाद की आंखों के सामने। तख्त को देखा, यजीद कहता है मेरे आइए मेरे साथ, सज्जाद की आंखों में आंसू आ गए, दो कदम और पीछे हट गए। कहा यजीद इस तख्त पर मैं तो नहीं बैठ सकता हूं। घबरा के कहता है क्यों? कहा ये वही तख्त तो है जिसके नीचे मेरे बाबा का कटा हुआ सर ला के रखा गया। हाय वो गैरतमंद बेटा कैसे इस तख्त पर बैठे, कल इसी के नीचे तश्त में मेरे बाबा का कटा हुआ सर था। यजीद ने सर झुका लिया, कहा कि फरजंद रसूल जो हो गया उसको भूल जाइए, अब मैं आपको रिहा करना चाहता हूं। भाई ये सुनना था, एक अजीब जवाब सज्जाद ने दिया। कहा यजीद सुन, जब से करबला का वाकया पेश आया है आज तक बगैर फूफी ज़ैनब के मैंने उनकी एडवाइस के बगैर कोई काम नहीं किया। ये इमाम कह रहा जो खुद हुज्जत खुदा है, करबला से आज तक मैंने बगैर ज़ैनब की एडवाइस के कोई काम नहीं किया, अपनी फूफी से जाके पूछूंगा। कुछ याद आया आपको? कल जब करबला में आखिरी खेमा जल रहा था और बीबियां कह रही थी शहजादी हम क्या करें, कहा कि मेरा बेटा इमाम वक्त है, मैं पहले सज्जाद से पूछूंगी। कल करबला में ज़ैनब ने इमामत का इंतजार किया, आज सीरिया में इमामत ज़ैनब का इंतजार कर रही है। पहचानो ज़ैनब कौन है, इमाम इंतजार कर रहा मेरी फूफी क्या कहती। वापिस आए कैदखाने में, यजीद ने इसलिए फूफी अम्मा यजीद ने इसलिए बुलाया है, बताइए हम क्या जवाब दें। ज़ैनब ने सुना, ज़ैनब को भी पता है मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, थोड़ी सी बात रह गई, वो अभी आती। मिशन कंप्लीट हो गए शाम के अपने नौजवान यजीद के अगेंस्ट। कहा सज्जाद बेटा यजीद से कहना हमारी तीन कंडीशंस है, अगर वो मानेगा तो हम रिहा होंगे और अगर नहीं मानेगा हमें नहीं चाहिए रिहाई। एक बात याद रखिए, पूरी दुनिया में जो विक्टोरियस होता है, जो विनर होता है, जो जीत जाता है, कंडीशन हमेशा वो लगाता, जो हार जाता है वो कंडीशन लगाता नहीं है, कंडीशन एक्सेप्ट करता। आज यजीद कोई कंडीशन लगाने की पोजीशन में नहीं है, आज कंडीशन ज़ैनब लगा रही है और यजीद को एक्सेप्ट करना पड़ रही है। यहीं से पता चल गया कि खुद यजीद भी मान रहा है अहले बैत जीत गए और मैं हार गया। मेरी तीन शर्तें अगर वो माने, पहली शर्त आपके मगज में क्या आती है, मेरी अकल में क्या आता अगर मैंने रिवायत पहले से ना पढ़ी होती। ज़ैनब को पहली शर्त यह लगाना चाहिए, हमारे बच्चे करबला से भूखे और प्यासे चले आ रहे, बहुत प्यासे हैं ये बच्चे, करबला के शहीद तीन दिन के प्यासे थे, करबला के कैदी तो पता नहीं कितने दिन प्यासे रहे। अरे इसी शाम में زینب بیٹھ کے نماز شب کیوں پڑھ رہی ہیں؟ سجاد بیٹا آنے والی غذا اتنی کم ہے میں اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دے. علی کی شیر دل بیٹی کے بدن میں اتنی طاقت نہ رہی کہ نماز کے لیے کھڑی ہو سنت نماز. لاجک کیا کہتی ہے؟ کامن سینس کیا کہتی ہے؟ زینب کی پہلی کنڈیشن ہونی چاہیے تھی سجاد یزید سے کہہ دے میرے بچے پیاسے ہیں، پہلے ہمارے لیے کھانے اور پانی لا کے دیا جائے ہمارے بچوں کے لیے، پھر ہم کو رہائی چاہیے. زینب نے یہ کنڈیشن نہیں لگائی. زینب نے کہا سجاد یزید سے کہہ دینا جب سے میرا ماں جایا حسین مارا گیا، جب سے میرا گھرانہ مارا گیا میں دل کھول کے اپنے گھر کا ماتم بھی نہیں کر سکی. ہمیں ایک مکان لے کے دیا جائے جس میں ہم اپنے لوٹے ہوئے گھر کا ماتم کریں اور سفیدہ بچھائیں. زینب نے بتایا میں بہت پیاسی ہوں، میرے بچے بہت پیاسے ہیں، لیکن ہمیں پانی کی پیاس نہیں ہے، ہمیں آنسوؤں کی پیاس ہے، ہمیں آزاداری کی پیاس ہے، ہمیں ماتم کی پیاس ہے. آج ماتم اور آزاداری کو لمیٹڈ کرنے والے زینب کی پہلی کنڈیشن تھی. زینب پانی کے بغیر رہ سکتی ہے، ماتم کے بغیر نہیں رہ سکتی. یزید آج ہر کنڈیشن قبول کر رہا، مکان کا انتظام کیا گیا. دیکھیے زینب و سجاد نے شام کے مردوں کو تو چینج کر دیا، ابھی عورتوں تک پورا میسج نہیں ملا. یہ جو الگ مکان لے کے آزاداری کی جا رہی، آزاداری بھی ہو رہی ہے اور اس میں صرف عورتیں آ رہی ہیں، کیونکہ اہل بیت میں صرف عورتیں، پرسا دینے شام کی عورتیں آ رہی ہیں اور زینب اپنا مشن عورتوں تک پہنچا کے کمپلیٹ کر رہی ہے. پہلی کنڈیشن. دوسری کنڈیشن، جب میرا بھائی مارا گیا تو اس کے بعد تیری فوج نے ہمارے تبرکات لوٹ لیے تھے، روپیہ پیسہ دنیاوی چیزیں رکھ لیں، ہمارے تبرکات ہمیں واپس کیے جائیں. اور تیسری شرط یہ ہے ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تیرے خزانے میں ہیں، ہمیں ہمارے شہیدوں کے سر واپس کیے جائیں. مکان لے کے دیا گیا جس کے اندر زینب نے امام باڑا بنا کر پہلی سفیدہ بچھائی ہے، اور ساری عورتیں ہیں تو شام کی عورتیں پرسا دینے آ رہی ہیں. کوئی زینب کے پاس بیٹھتی ہے تو کوئی رباب کے پاس، کوئی کلثوم کے پاس جاتی ہے تو کوئی فروہ کے پاس، کوئی لیلا کے پاس جاتی ہے تو کوئی کبرا کے پاس. اب یہ جگہ جگہ امام باڑے میں ماتم کے سرکل بن گئے. ہر ایک پوچھتا زینب کیوں رو رہی ہو، تمہارا کون مارا گیا؟ میرا ماں جایا مارا گیا. کیوں مارا گیا؟ بس یہ کیوں مارا گیا شامی نے پوچھا. زینب کو اپنا مشن آگے بڑھانے کا موقع ملا. کسی نے رباب سے کہا تم کیوں رو رہی؟ کہا میرا ششماہا مارا گیا، مشن آگے بڑھ رہا. مگر سجاد نے کہا سفیدہ بچھا تو دی ہے. ماتم شروع کرنے سے پہلے زینب نے سجاد سے کہا سجاد تبرکات چاہیے. اب تبرکات آنے لگے. سب سے پہلے تو عباس کا عالم آ گیا. عباس کا عالم دیکھنا تھا، زینب کھڑی ہو گئی. ایک بار عباس کی بہن زینب نے عالم لیا، سجاد اس مکان کی چھت پہ عباس کا عالم لگا دے، زینب اپنے بھائی کے عالم کے نیچے بیٹھ کے کربلا والوں کا ماتم کرے گی. اور پھر دوسرے تبرکات آنے لگے، لیکن آخر میں ایک ایسا کرتا آیا جو پورا کا پورا خون سے بھرا ہوا تھا. جیسے ہی وہ کرتا دور سے نظر آیا، زینب نے چیخ ماری، آنکھوں میں آنسو آ گئے. سجاد نے کہا بھوپی اماں، کیا آپ نے پہچان لیا کون سا کرتا؟ زینب نے کہا سجاد میں نہ پہچانوں گی، میں بہت چھوٹی تھی، مدینے میں میری ماں فاطمہ زہرہ یہی کرتا سیتی جاتی تھی. ماں فاطمہ روتی جاتی تھی، میں نے پوچھا تھا اماں آپ یہ کرتا سیتے ہوئے رو کیوں رہی؟ ماں فاطمہ نے کہا تھا زینب جب میرے لال حسین کے گلے پہ خنجر چلے گا تو یہی کرتا میرا حسین پہنے ہوئے ہوگا. اماں فاطمہ کے ہاتھ کا سیا ہوا کرتا. جب تبرکات آ گئے تو اب ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر آنے لگے. آپ بتائیے بیویوں میں کیا گزری ہو. قاسم کا سر آیا، فروا تڑپ کے آگے بڑھی، آ میرے لال بہت دن ہو گئے ہیں، ماں نے اپنے لال کے چہرے کی زیارت نہیں کی. علی اکبر 18 سال کا مہلکہ اکبر، شبیہ رسول خدا اکبر. اکبر کا سر نظر آیا، لیلا طلب کے آگے بڑی، لال تیری ماں تیرا انتظار کر رہی. عباس کا کٹا ہوا سر آیا، ام کلثوم बड़ी बहन है बे औलाद, तड़प के आगे बड़ी अब्बास, तेरी बहन तेरा इंतजार करती है। एक बात मुझे बताइए, सारे सर तो आ गए, जब असगर का नन्ना सा सर आया होगा तो रबाब पे क्या कयामत गुजरी होगी, कैसे तड़प के आगे बढ़ी होंगी। आए मेरे चश्मा है, आए मेरे लाल मां की गोद में आ जा। मगर आखिर में एक सर आया, वो आखिरी सर नजर आना, सारी बीवियां अपनी अपनी जगह से अदब और एहतराम से खड़ी हो गई, सबने उस कटे हुए सर का रुख किया और एक मरतबा पहले तो जियारत पड़ी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ने रसूल। कल आप भी जियारत पढ़ेंगे ना, सारी बीवियों ने शाम के इस मकान में आका हुसैन की जियारत शुरू की, मगर जो औरतें पुरसा देने आई हैं ना, हुसैन का सर जैनब की गोद में, अब्बास का सर कुलसूम की गोद में, अकबर का सर लैला, फरवा की गोद में कासिम, रबाब की गोद में असगर, शामी औरतों ने देखा दो कटे हुए सर एक कोने में रखे हैं, वो किसी की गोद में नहीं है। शामी औरतें पूछने लगी, शायद ये लावारिस बच्चे हैं, शायद इनका कोई जिंदा नहीं है। बस सज्जाद आगे बढ़े, तुमने ये क्या कह दिया, अरे ये मेरे भाई औन का सर है, ये मेरे भाई मोहम्मद का सर है, मैं इनका वारिस हूं। जैनब ने आवाज दी, सज्जाद बेटा औनो मोहम्मद को मैंने सदका कर दिया है, हम सदके का सामान गोद में नहीं उठाते। अल्लाह कैसा मातम उस घर में हुआ, तीन दिन या सात दिन। बस मेरे आखिरी जुमले, महमिल आने वाली है, आप भी इंतजार कर रहे होंगे। मातम मुकम्मल हुआ, अहले बैत रिहा हुए, आज काफिला तैयार हो रहा है शाम से मदीना जाने के लिए। महमिलें लाई गई, महमिल आज ऊंट आए हैं, ऊंटों पे अमारी और महमिलें हैं, हर अमारी पे पर्दा, हर महमिल पे पर्दा पड़ा हुआ। सज्जाद ने आके कहा, फूफी अम्मा सवारियां आ गई, आइए तशरीफ लाई। जैनब बाहर आई, बाहर आई, महमिल को देखा और एक मरतबा उल्टे कदम वापिस चली गई। सज्जाद, अब जैनब इन महमिलों में तो बैठने के लायक नहीं रही। उधर मदीना पहुंच के कुलसूम ने क्या कहा था, मदीना तो जद देना ला तकबलीना, नाना के मदीने हमें कबूल न करना, अब हम तेरे अंदर आने के लायक नहीं है। वो मदीना था, ये शाम है। जैनब ने कहा, सज्जाद अब जैनब इन महमिलों में नहीं बैठ सकती है। क्यों, महमिलों पे रेशम के पर्दे थे, हरीर और दीवा के पर्दे थे। सज्जाद मैं लुटके जा रही हूं, मेरा सारा घर मारा गया, मैं रेशम के पर्दों में बैठूं? ये सारे पर्दे बदलो, काले पर्दे लगाओ, पता चले सोगवारों का काफिला है, मातमियों का काफिला है, आजादारों का काफिला है, लुटा हुआ काफिला है। सारे पर्दे बदले गए और एक बार काफिला चला, अभी शाम से मदीना जाना है। मगर दो बार जैनब ने काफिले का रास्ता बदलवा दिया। एक बार जब शहर से निकले थे, कल जुमला पढ़ूंगा यहां से आगे, जैनब ने कहा, सज्जाद मदीने नहीं, पहले मुझे करबला लेके जा। मगर वो तो डिमस्कस से निकलने के बाद, अभी डिमस्कस में ये काफिला है, वो महमिलें हैं जिसकी छवि आने वाली है। वह मेरे आखिरी दो जुमले, जैसे ही काफिला आगे बढ़ा, जैनब ने कहा, सज्जाद काफिले का डायरेक्शन चेंज किया जाए, रुख बदला जाए, ये कहां जा रहा। कहा, फूफी अम्मा शहर का मेन गेट वो है, वहां से जाना। कहा, नहीं, पहले कैदखाने की जानिब मेरे काफिले को ले जा, मेरी ये अमानत इसी शाम में है, पहले काफिले को कैदखाने की जानिब ले जा। एक मरतबा कैदखाना नजर आया, जैनब महमिल से उतरी, अंधेरे कैदखाने में दाखिल हुई, एक नन्ही सी कब्र नजर आ रही है। जैनब आगे बढ़ी, सकीना की कब्र पे हाथ रखा, सकीना बेटी तेरी फूफी बड़ी शर्मिंदा है, करबला से लेके आई थी, शाम में अकेला छोड़ के जा रही है, मगर सकीना सुन, ये तेरी फूफी का वादा है, मैं वापिस इसी शाम में आऊंगी, कयामत तक अपनी बच्ची के साथ रहूंगी। और इतनी देर में शाम की औरतें भी आ गईं, कहा शहजादी ये कौन सी कब्र है? कहा ये मेरी बच्ची है, देखो मैं तो जा रही हूं, वापस तो आऊंगी, लेकिन तुम्हारी भी बच्चियां हैं ना, साहिब औलाद हो। रात का अंधेरा होता है, बच्चे डर जाते हैं, और ये बच्ची तो बहुत तमाचे खाए हुए है, ये बच्ची तो बहुत कोड़े खाए है, अगर मौका मिले रोजाना मगरिब के वक्त आके मेरी सकीना की कब्र पे चिराग जला देना। सकीना बेटी घबराना नहीं, तेरी फूफी आने वाली है, महमिल पे बैठी, महमिल वहां चली, अजा खाने में महमिल यहां आ गई, अपनी जगह से खड़े होके मातम करें करबला वाले।